नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया करते हैं, जिसका उद्देश्य है कि आप परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को जान सकें और उसके द्वारा किए गए उद्धार को जान सकें। तो श्रोताओ, आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एज्रा एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें यहूदियों के आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन के पुनर्गठन का इतिहास है। मूसा की व्यवस्था का अनुकरण करने से यहूदियों का नया जीवन प्रारंभ हुआ था, अतः ये पुस्तक वर्तमान में भी अनुकरणीय है। श्रोताओ, एज्रा ने अपने समकालीन यहूदियों के आचार विचार का स्थायी प्रभाव डाला, जिनके परिणाम स्वरूप बचे हुए यहूदियों ने यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने पश्चाताप करने के बाद अपने जीवन में मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलाने का दृढ़ संकल्प किया और इस पुस्तक के मुख्य विषय परमेश्वर यानी कि परमेश्वर की प्रजा तथा अनुग्रह पाने के साधन भी हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये दिखाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो। दुश्मन को भी है दोस्तो, दुश्मन को भी है दोस्तो, अपने गले लगाओ तुम।
जलते चराग गुल न हो, बुझते
चराग गुल न हो।
झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद। झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद। सच्ची मसीह जवाब बनो, सच्चे मसीह जवाब बनो, नामे मसीह फैलाओ तुम, जलते चराग गुल हो, बुझते दिए जलाओ तुम,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहकर उसकी अधीनता में होकर के आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने व सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस अध्ययन में भाग ले रहे हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हम बाइबल की पुस्तक में से नए नियम की पुस्तक अर्थात कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे थे और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और पुराने नियम की पुस्तक एज्रा नामक पुस्तक, उसके परिचय व उसके एक अध्याय के कुछ पदों को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसे आप हमारे जीवन में प्रतिदिन देते हैं ताकि हम आपके द्वारा पाए गए इस जीवन का सदुपयोग कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी अनुग्रह प्रदान करें, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं निश्चित रूप से या हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। आप हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, दुखी हैं, बीमार अवस्था में हैं, या किसी प्रकार के आर्थिक दबाव में हैं, या किसी प्रकार की व्यक्तिगत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिताजी, आप उन सब की भी सहायता कीजिए ताकि प्रत्येक इस बात को समझ सके कि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप प्रत्येक की चिंता करते हैं। आज की समय को हम में से हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारी सहायता करें एवं मदद करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम पुराने नियम के पुस्तक में से एज्रा नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हम पुराने नियम से एज्रा की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का लेखक स्वयं एज्रा ही है। एज्रा उन लेखकों में से एक है जिन्हें उचित मान प्रदान नहीं किया गया है। एज्रा हिल्किया का वंशज था जिसे हम एज्रा की पुस्तक दो अध्याय उसके एक पद में पाते हैं, और हिल्किया ही वह महायाजक था जिसे राजा यशयाह के राज्यकाल में व्यवस्था की प्रति मलबे में से मिली थी, जिसे हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 34 अध्याय उसके 14 पद में पाते हैं। मेरे मित्रों, एज्रा याजक था परंतु दासत्व के युग में वह याजकीय सेवा करने नहीं पाया था। उस समय मंदिर नहीं था, वह पूरी तरह ध्वंस्त हो गया था, परंतु उसने परमेश्वर का वचन पढ़ने में मन लगाया। एज्रा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद से हमें ज्ञात होता है कि वह निपुण शास्त्री था अर्थात व्यवस्था का ज्ञानी था। जी हाँ, एज्रा एक पुनरुद्वारक और समाज सुधारक भी था। पुनरुद्वार का आरंभ एज्रा द्वारा परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के द्वारा हुआ। यह नहमिया की पुस्तक अध्याय 8 से विदित है। संभवतः एज्रा 1 और 2 अध्याय इतिहास का तथा भजन संहिता 119 का बाइबल का सबसे लंबा अध्याय का भी लेखक था। मेरे प्रियो, एज्रा ही के प्रयासों द्वारा आराधनालय बनाया गया था और वह शास्त्रियों के समुदाय का संस्थापक भी था। उसने धर्मशास्त्र का विधिवत संग्रह किया तथा भजनों का संकलन किया था। तो आइए हम इज़रा को श्रद्धांजलि अर्पित करें, क्योंकि उसी के द्वारा बाइबल अध्ययन की जागृति आई थी। क्या यह परमेश्वर की नव जागृति की योजना नहीं है? मेरे मित्रों, हमारे युग में जागृति नहीं आई है। व्हाइट एल मूडी ने कहा, और जागृति देखी। अगली जागृति बाइबल अध्ययन की जागृति होगी। वे जिन्होंने संस्थाओं, रीतियों और युक्तियों द्वारा जागृति लाने का प्रयास किया, कभी सफल नहीं हुए हैं। जागृति तब ही आएगी जब मनुष्य परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे और उसके अनुसार चलेंगे। जी हाँ, इज़रा की पुस्तक का विषय है परमेश्वर का वचन। इस छोटी पुस्तक में परमेश्वर के वचन का उल्लेख 10 बार आया है। इज़रा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद, 3 अध्याय उसका 2 पद, 6 अध्याय उसका 14 पद और 18 पद, 7 अध्याय उसका 6 पद, 10 पद और 14 पद, 9 अध्याय उसका 4 पद, 10 अध्याय उसका 3 और 5 पद। परमेश्वर के वचन का स्थान इन लोगों के समग्र जीवन में देखा जा सकता था। धर्म, समाज, व्यापार तथा राजनीति। मेरे प्रियो, इस पुस्तक का मर्म इज़रा 9 अध्याय उसके 4 पद और 10 अध्याय उसके 3 पद में व्यक्त है। हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार काम किए जाएं। मेरे मित्रों, डॉक्टर जेम्स एम ग्रे ने इज़रा की पुस्तक के विषय में कहा था, हम देख चुके हैं कि बेबीलोन की बंधुआई यहूदियों को राष्ट्रीय पश्चाताप का कायल नहीं कर पाई थी कि राष्ट्रीय पुनरुद्वार हो। इज़रा की पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा कि फारस के राजा कुस्रू ने जब बंदियों अर्थात गुलामियों को अनुमति दी कि यरूशलेम लौट जाएं और मंदिर का पुनः निर्माण करें, तब कठिनाई से 50,000 यहूदियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और उनमें अधिकांश याजक और लेवी थे जो दीन और दरिद्र वर्ग के थे। मेरे मित्रों, इज़रा की पुस्तक इतिहास की पुस्तकों में अंतिम पुस्तक है, परंतु वे यथाक्रम नहीं है। जी हाँ, दूसरे इतिहास की पुस्तक के अंत में हम देखते हैं कि दक्षिणी राज्य यहूदा 70 वर्ष के लिए दासत्व में अर्थात गुलामी में चला गया। हम इज़रा तक उनके इतिहास के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनते हैं। 3 ऐतिहासिक पुस्तकों को बंधुआई के बाद की पुस्तक कहा जाता है, इज़रा, नहमिया और एस्तेर। बंधुआई के बाद की 3 भविष्यवाणी की पुस्तकें भी हैं, जैसे हगै, जकर्याह और मलाकी। मेरे मित्रों, इज़रा और नहमिया एक साथ थे। इज़रा याजक था और नहमिया एक साधारण मनुष्य है। दोनों ने एकजुट होकर ऐसा काम किया कि यरूशलेम में परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। वे दोनों एक साथ शहर पनाह, यरूशलेम नगर और मंदिर के पुनरुद्वार का कारण थे। जी हाँ, हगै और जकर्याह ने भी एक साथ होकर काम किया। उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया कि मंदिर का पुनः निर्माण करें। हगै एक कर्मठ व्यक्ति था, जैसा कि हम उसकी पुस्तक में देखेंगे। मंदिर का पुनः निर्माण और पुनरुद्वार उसका सर्वोच्च मनोवेग था। वह सीधा और साफ था, जैसे 2+2 अर्थात 2+2 या 2+2=4 होते हैं। वह न तो रोमांचकारी था और न ही कवि था, परंतु व्यवहारिक था। दूसरी ओर नहमिया स्वप्नदर्शी था। हगै के पांव धरती पर थे तो जकर्याह का मन मस्तिष्क बादलों में रहता था। उदाहरण के रूप में देखें, उसने एक स्त्री को टोकरी में उड़ते देखा था। मेरे मित्रों, यह कविता है, परंतु हगै को ऐसा दर्शन नहीं प्राप्त हुआ था। रोचक बात तो यह है कि जकर्याह मंदिर की पैमाइश, उनमें द्वार और नींव आदि के बारे में सोच ही नहीं सकता था। हगै और जकर्याह की सहकारिता ठीक वैसी ही थी जैसी इज़रा और नहमिया की। एक प्रयोगात्मक व्यक्ति और एक कवि को साथ साथ काम करना था, यह परमेश्वर की व्यवस्था थी। जी हाँ, हगै और जकर्याह की पुस्तकों को इज़रा की पुस्तक के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि तीनों पुस्तकें मंदिर के पुनः निर्माण के प्रकाश में लिखी गई हैं और मंदिर के पुनर्निर्माण के निमित्त जनता को समर्पित है। इज़रा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब हगै नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। ध्यान दीजिए, इज़रा की पुस्तक के 2 मुख्य भाग हैं। पहले 6 अध्यायों में जरुबाबेल की अगुवाई में यहूदियों का लौटना लगभग 50,000 का लौटना था। उसके पश्चात 7-10 में इज़रा की अगुवाई में लगभग 2,000 यहूदियों का लौटना हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें 1 और 2। इसका विषय है राजाज्ञा और आंशिक यहूदियों का यरूशलेम लौटना। सबसे पहले मंदिर पुनः निर्माण की कुस्रू द्वारा आज्ञा को देखें। इज़रा 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इज़रा आरंभ ही में परमेश्वर के वचन पर ध्यान आकर्षित करवाता है। फारस के राजा कुस्रू का नाम भी लिखा है। वह प्राचीन संसार के प्रबुद्ध शासकों में से एक था। वह भविष्य सूचक भविष्यवाणी का विषय था। उसके जन्म से पूर्व ही उसको नाम दे दिया गया था। फारस का राजा होने के लगभग 2 वर्ष पूर्व यशाया नबी की पुस्तक 44 अध्याय उसके 28 पद में भविष्यवाणी का वचन कहता है, जो कुस्रू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय कहता है, तेरी नींव डाली जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं 45 अध्याय के 1 पद में वह कहता है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्रू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं। कुस्रू मसीह का प्रतीक है। दानियल कुस्रू के दरबार में प्रधानमंत्री था और उसने उसे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का बोध करवाया। जी हाँ, कुस्रू जानता था कि वह क्या कर रहा है जब उसने इसराइलियों के लिए आज्ञा निकाली कि वे स्वदेश लौट जाएं। लिखा है कि उसके इस काम के द्वारा भविष्यवाणी पूरी हुई थी। यह भविष्यवाणी की यथावत पूर्ति है। मेरे मित्रों, कुस्रू के ही युग में दानियल ने अपनी कुछ महान भविष्यवाणियां लिखी थी, जिसमें इसराइल राष्ट्र के संबंध में 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी भी है। आरंभिक धर्मशास्त्र का 1/4 भाग भविष्यवाणी ही था। भविष्यवाणियों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। इज़रा नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में धर्मशास्त्र का वह भाग है जो भविष्यवाणी की पूर्ति है। मसीह के प्रथम आगमन के लगभग 300 से अधिक भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ विचारकों के अनुसार यीशु के दूसरे आगमन की भी 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं, परंतु मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है। मेरे मित्रों, मसीह का जन्म पुराने नियम की भविष्यवाणी है। उसके जन्म के बारे में 4 मुख्य बातें कही गई थी। आइए देखें। पहला है, उसका जन्म बेतलहम में होना था, जिसे हम मीका की पुस्तक 5 अध्याय के 2 पद में देखते हैं। दूसरा, उसे नासरी कहलाया जाना था, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय के 5 पद में। तीसरा है, उसे मिस्र से निकलना था, होशे की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद में। चौथा है, यरूशलेम के निकट एक छोटे नगर रामा में बिलाप का शब्द सुनाई देगा, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 15 पद में। मेरे मित्रों, मत्ती इन 4 भविष्यवाणियों को संयोजित करके मसीह के जन्म की कहानी सुनाता है। मत्ती 2 भविष्यवाणी की पूर्ति ही है। इज़रा 1 अध्याय 1 पद भी भविष्यवाणी की पूर्ति है। बंधुआई के 70 वर्ष पूरे हो गए थे, अतः इसराइलियों को स्वदेश लौटने की आज्ञा मिल गई थी, परंतु बहुत कम इसराइल स्वदेश लौटे। हम इज़रा की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, फारस का राजा कुस्रो यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। मित्रों ध्यान दीजिए, कुसरो की राजाज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो कुसरो कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने उसे पृथ्वी भर का राज्य दिया है। किसी ने पूछा कि क्या अमेरिका का राज्य भी उसे दिया था? उस समय अमेरिका में किसी को रुचि नहीं थी और वह एक राज्य था भी नहीं। कुसरो एक प्रमुख राजा था। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे पृथ्वी भर का राज्य दिया है। वह एक सर्वोच्च व्यक्तित्व था। मेरे प्रियो, उसे यह बोध था कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस समय संसार में कितने शासकों को इस सत्य का बोध है कि वे परमेश्वर के सेवक हैं। वे चाहे समझे या ना समझे, परमेश्वर ने ही उन्हें वो पद दिया है। जी हाँ, कई बार हम भी इस बात को भूल जाते हैं कि जो पद या स्थान मुझे या आपको दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह परमेश्वर की ओर से है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप उसकी उस अभिव्यक्ति पर ध्यान दें, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। जी हाँ, यह परमेश्वर इज़रा, नहमिया और दानियल की विशेष अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति इन पुस्तकों से पूर्व धर्मशास्त्र में नहीं पाई जाती है। यरूशलेम के पतन और विनाश के बाद परमेश्वर को करूबों पर विराजमान मंदिर का परमेश्वर नहीं कहा जा सकता था। वहां से तो परमेश्वर की महिमा प्रस्थान कर चुकी थी। इसराइल की कुल चिन्हित ढाल पर इकाबोद लिखा हुआ था। यहेजकेल ने परमेश्वर की महिमा शकीना का प्रस्थान देखा था और यही कारण था कि बंधुआई के बाद की धर्मशास्त्र पुस्तकों में उसे स्वर्ग का परमेश्वर कहा गया है। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, यहेजकेल ने यरूशलेम के मंदिर से परमेश्वर की महिमा को जाते देखा था। वह वहां से उठ गई और देखती रही कि परमेश्वर की प्रजा उसके पास लौट आए और मूर्ति पूजा से मन फिराए, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया। महिमा नगर से उठकर शहर पनाह तक गई और इसराइल के मन फिराव की प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया। वे परमेश्वर के निकट नहीं आए तो महिमा जैतून के पर्वत पर चली गई और उनकी प्रतीक्षा की, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया और तब परमेश्वर के निकट वे नहीं आए। इस कारण महिमा स्वर्ग में चली गई और विलोप हो गई। मेरे प्रियो, मुझे और आपको कई अवसर दिए जाते हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करके हम उसके साथ मिल जाएं, उसके उन आशीषों को प्राप्त करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। एक दिन मंदिर में एक मनुष्य आया और उसने कोड़ा बनाकर मंदिर का शोधन किया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में पाते हैं। महिमा प्रत्यक्ष नहीं थी, वह मानवीय देह में विद्यमान थी। वह परमेश्वर स्वयं था। उसने अपनी महिमा त्याग दी और पृथ्वी पर आया, परंतु वह वास्तव में पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मानव था, क्योंकि उसकी महिमा अप्रत्यक्ष थी। उसका त्याग किया गया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मनुष्य ने उसे क्रूस पर तो चढ़ा दिया था, वह वास्तव में राजा है। मत्ती रचित सुसमाचार में वह राजा रूप में जन्मा था और राजा के समान जिया था। राजा के समान उसने आश्चर्य कर्म किए, उसने राजा के समान शिक्षा भी दी और वह राजा के समान बंदी बनाया गया। राजा के समान उस पर मुकदमा चलाया गया और अंततः वह राजा के समान मर भी गया। मेरे मित्रों, वह राजा के समान कब्र में रखा गया था। वह फिर जी उठा तो भी राजा ही था और राजा फिर स्वर्ग में चला गया। वह फिर राजा स्वरूप आएगा। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 1 तिमोथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज वह स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर उससे भेंट करने आपको बेतलेहम जाने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में विद्यमान है, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और वह चाहता है कि आप उसके निकट आएं। पृथ्वी से महिमा के प्रस्थान करने के बाद परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अन्य जाति के अधीन कर दिया और उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में अर्थात गुलामी में भेज दिया। उसने इसराइल से परमेश्वर का राज्य उठा लिया और स्वर्ग का परमेश्वर बन गया। वह आज भी वैसा ही है और यरूशलेम लौट आने तक वहीं रहेगा। इसके बाद वह संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभु होकर अपना सिंहासन स्थापित करेगा। उस समय यरूशलेम एक महान राजा का नगर होगा। मेरे प्रियो, अब इज़रा की पुस्तक 1:2 में एक बार फिर से ध्यान दें और देखें कि कुस्रो ने कहा, उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। जी हाँ, यह उसकी आज्ञा थी। यह बात वास्तव में अद्भुत हो जाती है जब हम इस तथ्य को अंतर्ग्रहण करते हैं कि कुस्रो अन्य जाति राजा था। अंततः कुस्रो दानियल भविष्यद्वक्ता की सेवा के द्वारा जीवित और सच्चे परमेश्वर का भेद अंतर्ग्रहण कर पाया था। कुस्रो बेबीलोन में रहने वाले यहूदी बंदियों को यरूशलेम लौट जाने की आज्ञा देता है, अर्थात यह परमेश्वर के कहे गए वचन का पूर्णता पूर्ति होती है। मेरे प्रिय मित्रों, इस अध्याय में हम देखते हैं कि इज़रा परमेश्वर का भक्त जो वचन को महत्व देता है। आज मेरे और आपके जीवन में आप वचन को कितना महत्व देते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उसे सुनना पसंद करते हैं? क्या आप उसके अनुसार चलना पसंद करते हैं? आज मुझे और आपको देखना है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। यदि नहीं तो आज निर्णय लें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार चलना और बढ़ना और सीखना चाहती हूँ। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम इससे आगे की बातों को सीखेंगे। तब तक आप सब प्रभु की निकटता में बने रहें, वचन के अनुसार चलें, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार दे चलो।